करम चामे दिव्यम् एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सुअर्जुन जनम करम चामे दिव्यम् एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सुअर्जुन जनम करम चामे दिव्यम् एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सुअर्जुन। इसका अनुवाद पढ़ेंगे साथ में, बोलिए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान ने ये श्लोक बोला है। इसमें भगवान कहते हैं जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को, तो भगवान का आविर्भाव शब्द इस्तेमाल हुआ है आविर्भाव, लेकिन ऊपर दिया गया है जन। श्लोक में भगवान कहते हैं जन, पर उसी को अनुवाद करके लिखा गया आविर्भाव। इसका क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण का कभी जन नहीं होता है। फिर हम हर साल जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं? हर साल बना रहे हैं, सालों साल से। जिन्हें नहीं भी पता कृष्ण के बारे में, वो भी जन्माष्टमी तो जरूर बनाते हैं। तो जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं? तो अगर जन्म ही नहीं होता, भगवान ने कहा मेरा जो जन्म है वो जन्म होता नहीं मेरा, यहाँ पर का जन्म मतलब आविर्भाव, तो फिर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? देखें, अगर आप भगवान के जितने भी अवतार हैं, राम, रामचंद्र जी का जब फेस्टिवल आता है तो उसको कहते हैं रामनवमी, उनकी अंतरंगा शक्ति का फेस्टिवल आता है, सीता माता का, तो कहते हैं सीता नवमी, राधा रानी का फेस्टिवल आता है जन्म का, तो कहते हैं राधा अष्टमी है। जब वामन भगवान का आता है तो कहते हैं वामन द्वादशी, अभी नरसिंह भगवान आए थे पिछली बार तो नरसिंह चतुर्दशी, लेकिन जब भगवान कृष्ण पैदा होते हैं उनके फेस्टिवल को कहते हैं जन्माष्टमी, उसमें कृष्ण नहीं आता। बताओ, जो कह रहे मेरा जन्म नहीं हुआ उन्हीं की जन्माष्टमी बनाते हैं हम। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भगवान ने कहा जन्म करम च मे दिव्यम। दिव्यम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिव्य बहुत ही इसको महत्वपूर्ण है। एक भक्त के जीवन में अगर ये श्लोक उसे समझ में आ जाए तो फिर जितना भी भागवत है, जितना भी जीवन में सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो सब समझ में आएगा। क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा जन्म करम च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। हमारी तरह भगवान जन्म नहीं लेते हैं कि माता पिता की शादी हुई, फिर उसके बाद में वो हनीमून पे गए, वहां से वापिस आए, संतान उत्पत्ति का प्रयास किया, 9 महीने गर्भ में रहे, 9 महीने बाद डिलीवरी हुई, पेन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फिर तो कृष्ण जो पैदा हुए, देव की वासुदेव का विवाह कब हुआ, कहाँ गए होंगे, कैसे रहे होंगे, सब सैनिकों के बीच में उन्होंने कैसे संसर्ग किया होगा, ऐसा थॉट नहीं है मौतिक। भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान वासुदेव के हृदय में थे, सदा से हृदय में विराजमान थे, कई जन्मों में तपस्या करी है, 1000 दिव्य युगों तक तपस्या करी, हृदय में बैठे हैं भगवान, और वही भगवान हृदय से वासुदेव जी के मन में आए, और वासुदेव जी के मन से देवकी के मन में आए। मन में होता है ना, जैसे अगर आपको कोई समझाना चाहे कोई बात, तो उसके मन की बात, कह रहे मेरी मन की बात तो सुन लो, अपने मन की बात देवकी को सुनाई, तो इनके मन की बात उनके मन में ट्रांसफर हो गई, और उनके मन से कोई कोई बात मन में ऐसी गहरी बैठ जाती है, कहते हैं ऐसी बैठी कि हृदय तक उतर गई। तो भगवान कृष्ण मन में बैठे और हृदय में उतर गए, और हृदय से फिर भगवान गर्भ में उतर गए। यहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं है फिजिकल, जब तक कोई बात ये नहीं समझेगा, जन्म कर्म चा मे दिव्यम, सिमिनल बर्थ नहीं होता है, वीर से भगवान का जन्म नहीं होता है। इसलिए भगवान के जन्म को उन्होंने कहा आविर्भाव। जब भी कोई महापुरुष या फिर भगवान जन्म लेते हैं उसको कहते हैं आविर्भाव। आविर्भाव मतलब प्रकट होना। जैसे सूरज, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे सूरज प्रकट हुआ और शाम को सूरज चला गया 6 बजे, तो क्या कहते हैं, सूरज मर गया, 6 बजे सूरज मर गया है। कहां चला गया सूरज, अगर अभी हमें नहीं दिख रहा है तो कहां गया, हाँ अस्त होकर कहां गया, हाँ जी पीछे जाके कहां रोशनी कर रहा है, दूसरी कंट्री में। इसका मतलब सूरज कभी अस्त नहीं हुआ है, सिर्फ उसने अपनी जगह बदल ली है। सूरज अस्त हो जाएगा तो ब्रह्मांड में ना कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, फसलें नहीं होंगी, हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। तो ये सारी चीजें, नदियों से भाप नहीं उड़ेगी, एवोपरेशन प्रोसेस नहीं होगा, बारिशें नहीं होंगी, सारा सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, पेड़ों को जो पेड़ों के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर नहीं होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कुछ नहीं होगा अगर सूरज नहीं है, सनलाइट नहीं है, और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो सूरज अस्त नहीं होता है, सूरज सिर्फ इस जगह से दूसरी जगह जाता है, उधर के लोगों को रोशनी देता है और फिर दूसरी तरह आता है। तो पृथ्वी घूमती रहती है, सूरज एक ही जगह पे है, या कहें सूरज घूमते रहते पृथ्वी की जगह पे, जैसे आपको समझना चाहे। बात ऐसी है कि सूरज कभी भी अप्रकट नहीं होता है, प्रकट रहता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण दिखता है हमको, ओहो भगवान तो द्वापर युग में मर गए थे ना, वो तो चले गए, फिर कहां गए, किसी और ब्रह्मांड में भगवान, जिससे सूरज किसी और प्लेनेट में रोशनी देता है, कृष्ण इस समय किसी और ब्रह्मांड में अपनी नित्य लीलाएं कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं कैसी है, नित्य लीला, कभी भी समाप्त न होने वाली। भगवान की लीलाएं हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलती हैं। हमारी लीलाएं कैसी होती हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम जवान रहते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बच्चे, और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान जब द्वापर युग का युद्ध चल रहा था, महाभारत का, महाभारत के युद्ध में भगवान की आयु 90 वर्ष की दिखाई गई है और अर्जुन 70 वर्ष के हैं, और 90 वर्ष के भगवान के कई सारे बच्चे हैं, प्रद्युम्न और उनके आगे अनिरुद्ध, और उनकी 16108 रानी, और हर रानी से उनको 10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, लेकिन सभी पुत्र को जब यशोदा मैया ने, देवकी ने देखा यहीं पर पास ही में कुरुक्षेत्र के अंदर, तो देखकर के हैरान रह गई कि कृष्ण तो अपने नाती पोतों से भी ज्यादा युवा लगते हैं। यही भगवान की क्वालिटी है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम चा वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी ने एक संहिता लिखी जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। उस ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलते ब्रह्मा जी, बोलते ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं अद्वैतम, भगवान के जैसा दूसरा कोई नहीं है, अद्वित व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं, नोबडी एल्स। इसलिए उनका नाम है सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई और कोर्ट नहीं होता, सुप्रीम कृष्णा है सुप्रीम। तो अद्वैतम अच्युतम, भगवान कभी हारते नहीं है, किसी भी चीज में ले जाओ भगवान की विजय होती है। अद्वैतम अच्युतम अनादि, भगवान इस सृष्टि के समाप्त हो जाने पर भी विराजमान रहते हैं, और जब कुछ नहीं था तब भी सिर्फ भगवान कृष्ण ही थे। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, फिर भी अपना विस्तार राम नरसिंह वामन आदि रूपों में करते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, लेकिन है कैसे, बहुत पुराने हैं, पुराणिक व्यक्ति हैं, पुराणम बहुत पुराणिक, इतने पुराने हैं कि गीता के 12वें अध्याय के अंदर भगवान, इसी 4वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूं, 12 करोड़ वर्ष पहले मैंने सूर्य देव को भी ये ज्ञान दिया था। 12 करोड़ वर्ष की गारंटी तो 4वें अध्याय में ले ली, 12 करोड़। अभी आप सोचो हमारे जो ये 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनकी अवधि होती है 443,20,000 साल, जिसमें से 432,000 साल का कलयुग, उसका दुगना डबल 864,000 साल का द्वापर युग, उसका तिगुना 12,96,000 सालों का त्रेता युग, उसका 4 गुना 17,28,000 वर्षों का सतयुग। ये सारे टोटल करें 17, 28, 12, 96, 8, 64, 4:20, ये पूरा अगर 4:32 ये सबको टोटल करें तो बनता है 43,20,000 साल। 43 लाख साल नहीं बोला भगवान ने, कहा 12 करोड़ वर्ष पहले ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन तुम्हें पुनः दे रहा हूं इसी 4th अध्याय में। दिव्य ज्ञान इसका नाम इसीलिए है, इस चैप्टर में भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकट किया है कि भगवान का जन्म कर्म बड़ा दिव्य है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, बहुत पुराने हैं तो पुराना व्यक्ति कैसा दिखना चाहिए? बूढ़ा, एकदम गीला हुआ शरीर होना चाहिए, कान से बाल निकलने होने चाहिए, एकदम दांत तो नहीं होने चाहिए, आंख नहीं होनी चाहिए, है ना, और हाजमा खराब होना चाहिए, खांसना चाहिए। लेकिन आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, नव यौवन रहते हैं, कभी वो बूढ़े ही नहीं होते। 16 वर्ष की आयु से ऊपर कभी भगवान बढ़ते नहीं है और घटते भी नहीं है। एक धाम है भगवान का ऊपर, उसे कहते हैं नित्य धाम। एक धाम है यहाँ पर वृंदावन, जहाँ हम कभी कभी यात्रा लेके जाते हैं, यहाँ से हर 2-3 महीने में भक्त जाते हैं हमारे साथ। तो वृंदावन धाम को कहते हैं भौम वृंदावन, भौम मतलब भूमि का वृंदावन। तो फिर ऊपर कौन सा है? अप्रकट वृंदावन, गोलोक वृंदावन। उस वृंदावन धाम में भगवान नित्य लीला करते हैं, लेकिन वहां कभी भी बाल लीलाएं नहीं होती है, वहां बालक लीलाएं नहीं होती है कि छोटे बच्चे को यशोदा मैया गोदी में खिला रहे हैं। लेकिन कृष्ण जब इस वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो गोलोक वृंदावन धाम से नीचे भौम वृंदावन में उतरते हैं। ऊपर है गोलोक वृंदावन, नीचे है गोकुल वृंदावन। तो गोकुल वृंदावन में बालक बन के आते हैं कृष्ण, ऊपर लीला नहीं करते बालक वाली, वहां वो राधा रानी के साथ किशोर अवस्था में नव यौवनम चा रहे थे, 16 साल के, राधा रानी 13 साल के, इससे कम ज्यादा नहीं होते, दोनों फिक्स्ड है। यही उनका भगवत्ता है, भगवान की ना एक दिन उम्र घटती है ना बढ़ती है, इसीलिए क्योंकि वो आदि है, उनका कोई जन्म नहीं है, कोई नहीं बता सकता जन्म कब हुआ। भगवान गीता में कहते कालो अस्मि, जो काल गणना करेगा कि बर्थडे कब होगा वो काल भी मैंने ही प्रकट किया, कालो अस्मि। इसीलिए भगवान के लिए बोला गया अनादि, अनादि मतलब जिसमें समय का भी मालूम नहीं, कितने साल करोड़ों कितने अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि की रचना करी भगवान ने, क्योंकि काल ही नहीं था, गणना कैसे करें। जब सृष्टि रचना करी तब भगवान ने काल बनाया, समय। तो समय बनाने पर हमारा एक लेक्चर है, कभी आप सुन सकते हैं, समय के ऊपर, समय मूल्यवान है। उसमें उस लेक्चर में हमने वर्णन किया है कि किस प्रकार से शास्त्र में मूल की गणना होती है, सेकंड की गणना होती है, पल की, क्षण की, क्या क्या वैल्यू है, सारा वर्णन किया गया है। समय मूल्यवान है ऐसे करके हमने डाला है उसमें एक। तो आप सोच सकते हैं समय को भागवत में इतना कुछ वर्णन किया गया है। कहते हैं कि लव जो होता है, हमने तो सुना होगा लव मतलब आई लव यू होता है खाली, है ना, लेकिन शास्त्र कहते हैं लव का मतलब होता है कि 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, ये लव के बारे में वर्णन किया गया है। अब ये भागवत का वर्णन है। अब हमने तो ना लव सुना, ना ओघा सुना, ना महायोगा सुना, ना शंकु सुना, ये समय की गणना शास्त्रों में करी गई है, उसको देखते देखते 1 सेकंड मिनट आवर्स बनाए गए हैं। हमारे पास तो 3-4 ही हैं, नैनो सेकंड, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, लेकिन उसमें इतनी गणना है, आप सुनेंगे आपको हैरान हो जाएंगे। सेकंड को भी तोड़ करके, सेकंड को भी तोड़ कर, उसके भी उसको तोड़ करके लव, बहुत लंबी गणना है। तो अलग किसी दिन क्लास लेंगे समय को कैसे नापा जाए। तो कृष्ण ने बोला कालो अस्मि, मैं ही काल हूं, तो भगवान से पहले कुछ नहीं था। नव यौवनम चा, तो कैसे समझेंगे ऐसे भगवान को? वेदेशु दुर्लभम, वेद भी इसको नहीं समझ सकते। कई लोग बोलते हैं ना वेद पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, कृष्ण कहते हैं कि वेद जो है वो मैंने ही तो लिखे हैं। वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित अहम, मैंने ही तो वेदों को कृत, वेदों को मैंने ही बनाया, तो कैसे वेद बताएंगे मेरे बारे में, मैंने कम उसमें नहीं लिखा कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे वो नहीं लिखूंगा। तो ना एक बार वृंदावन के कुछ आचार्य कहते हैं वेद मेरे भेद, वेद मेरे भेद, भेद समझते हैं क्या होता है, क्या होता है भेद, भेद मतलब क्या है? हाँ, रहस्य। वेद मेरे भेद, मैं भेदन का माही, माही मतलब, माही मतलब एक्सपर्ट, ओके, और संचालक, यस, कर क्रिएट करने वाला, माही मतलब जो बनाने वाला है। वेद मेरे भेद, मैं भेदन का माही, उन भेदों को बनाने वाला भी मैं हूं, लेकिन मैं कल क्या करूंगा ये वेदन में भी नहीं, कल मैं क्या करने वाला हूं वेद भी नहीं बता सकते हैं। तो कैसे हम कृष्ण को समझेंगे? अदुर्लभम, इनको वेदों से समझना मुश्किल है, वेदेशु दुर्लभम, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन जो आत्म रूप से भक्त बन जाते हैं, कृष्ण के नाम जप करते हैं, अपना शुद्धिकरण करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, प्रसाद खाते हैं, उनको प्रकट हो जाते हैं अदुर्लभम आत्मभक्तो। एक वर्ड है दुर्लभम वेदेशु दुर्लभम, दूसरा वर्ड है अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो वेदों से तो दुर्लभ है समझे नहीं जाएंगे, पर हमारे लिए सरल है, किसके लिए? आत्मभक्तो। तो आत्मा समझो पहले, हम कौन है? आत्मा। फिर हमारा काम क्या है? जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के दास बनना। फिर हमारा क्या हो जाएगा? वेदेशु दुर्लभ लेकिन अदुर्लभ आत्मभक्तो, भक्तों के समझ में आ जाता है। इसीलिए बोला गया गोविंद माधि पुरुषम तम अहम भजामि, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे गोविंद का मैं रात दिन भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी लगे रहते हैं रात दिन जप करने में, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तात्पर्य में आप देखेंगे कि तात्पर्य में दिया गया ब्रह्म संहिता में पांचवें अध्याय के 33वें श्लोक में ये बताया गया है, भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप। इसमें एक ही लाइन दी गई है, हमने आपको चारों लाइनें सुना दी हैं एडिशनल। तो यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वह अद्वैय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसार विद्वानों तथा ज्ञानी योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधोनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरुक्तो भक्त व्यापी हर आत्मा, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं दिव्य है, डिवाइन है। कैसी लीला है भगवान की? सो रहे हैं आप लोग, कैसी है? डिवाइन, डिवाइन मतलब दिव्य। कोई चीज के लिए डिवाइन कहते हैं ना, कैसा एक्सपीरियंस था? ओ प्रभु जी, इट वॉज ए डिवाइन एक्सपीरियंस। डिवाइन मतलब बहुत ही दिव्य। तो भगवान कह रहे जन्म और कर्म, कोई भी एक्शन भगवान कर रहे हैं उसमें भी दिव्यता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, अगर कोई व्यक्ति सच में इसको तत्व से जान गया। अब तत्व से जानने का क्या मतलब है? तत्व से जानने का मतलब है कृष्ण जो है वो अपने कितने भी रूपों में प्रकट हो, राम नरसिंह। कई लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा आप कृष्ण को पूछते हैं राम को नहीं पूछते। जी भाई साहब, 100 रुपए के नोट के अंदर 90 रुपए का नोट होता है। कोई बोले कितने लोगों पे 100 रुपए का नोट है, तो बहुत लोग हाथ खड़ा करेंगे। बोले कितने लोगों के पास 90 रुपए का नोट है, तो 90 रुपए तो 100 के अंदर ही है ना। तो कृष्ण को अगर पूज लिया तो राम भी पूज लिए, नरसिंह भी पूज लिए, वामन भी पूज लिए, शिव भी पूज लिए, दुर्गा भी पूज लिए, सभी उस 100 के अंदर आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ओम पूर्ण विदम, मैं कैसा हूं? कंप्लीट। एंड ही इज कंप्लीट, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज गॉड, बिकॉज गॉड की एक परिभाषा है गॉड इज कंप्लीट। लेकिन लोग कहते हैं गॉड तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। भगवान निराकार है, वो तो कृष्ण रूप लेके आता है। आप खुद दिमाग लगाइए, लॉजिकल कॉमन सेंस। अगर भगवान निराकार है, निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, इसका मतलब गॉड इज इनकम्प्लीट इन फॉर्म, ही इज फॉर्मलेस। फॉर्म उसकी नहीं है, उसमें एक चीज की कमी है कि उसकी फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। अगर उसकी कमी है तो फिर वो कंप्लीट कैसे है? अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो गॉड नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में गीता के, जरा खोलिए 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 12th चैप्टर सेकंड वर्स। तो 12वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं पहले, फिर दूसरा पढ़ेंगे। पहले में अर्जुन का प्रश्न है और दूसरे में श्री कृष्ण का उत्तर है। मिला आप लोगों को? 12वां अध्याय नहीं मिल पा रहा है कैसे? 440 वोल्ट दे रहे हैं हमारे प्रभु जी सबको, 440 वोल्ट। 439 पे 12वां अध्याय है जिसका नाम है भक्ति योग, भक्ति। उसमें पहला प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा? जो आपकी सेवा में, बोलिए, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जैसे प्रशांति धाम में जो लोग भक्त आते हैं, पाम कोट से भी आए हैं हमारे प्रभु, तो जो लोग सदैव सत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं, निर्वेश ब्रह्म मतलब निराकार। एक पूछ रहा है अर्जुन की साकार जो हमेशा बिजी रहते हैं आपकी आरती उतारने में, दीपक ज्योति करने में, और एक जो निराकार पूछते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए, इसमें से कौन सा ज्यादा पूर्ण है, कंप्लीट किसको माना जाए। अर्जुन का प्रश्न था क्योंकि पता था कलयुग में अधिकतर लोग निराकारवादी होंगे। क्यों निराकारवादी होंगे? ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं मानते, हाँ चलता सब कुछ भगवान भरोसे, लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं ना, आरती कौन करे, व्रत कौन करे, भगवान की माला बनाना, वस्त्र लाना, इतना सब नहीं, इसलिए भगवान निराकार कर दो, टेंशन फ्री रहेंगे। तो अर्जुन ने असली प्रश्न पूछ लिया कि भगवान निराकार है या फिर साकार है। तो भगवान ने अगले श्लोक के उत्तर में कहा, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, बोलिए, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। क्लियर है ना? कोई भैंस ही नहीं है ना, भैंस तो गई पानी में, हमारी कोई भैंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, साक्षात लिखा हुआ है। बोले दो और दो चार होते हैं कि दो और दो तीन होते हैं कि दो और दो पांच? बोले जी हमारे गांव में तो तीन होते थे, हमने तो यही पढ़ा है। बोले जी हमारे स्कूल में तो हमें पांच पढ़ाया गया, हमने तो एमबीए भी किया, एमटेक किया, पांच ही पढ़ा। प्रभु जी पता नहीं कहां से बोल रहे दो और दो चार होता है, तो कहां से प्रूफ होगा कि दो और दो चार होता है? कैसे प्रूफ कर सकते हैं? कहां से प्रूफ होगा? भगवान ने थोड़े कहा दो और दो पांच होता है। कैसे पता चलेगा दो और दो होते हैं? नहीं, ये तो निराकार साकार का हो गया, दो और दो चार होते कैसे पता चलेगा? आर्यभट्ट की पुस्तक उठाएंगे, मैथमेटिक्स, उन्होंने तो गणित लिखना सिखाया लोगों को, 0, 1, 2, 2+2=4, तो कोई बुक के बेसिस पे, प्रमाण पे ही हम कर सकते हैं। मेरा नाम क्या है? तो अगर मैं जाऊं सरकारी नौकरी के लिए, बोले आपका नाम है, कहूं माय नेम इज प्रशांत मुकुंददास, कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ? बर्थ सर्टिफिकेट। प्रूफ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। भगवान को निराकार या साकार कहना इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो भी बहस करे बोलो आपके घर में गीता है, नहीं है तो गूगल पे तो गीता है, लोगो भगवत गीता एज इट इज यथारूप डालो, उसमें चैप्टर 12 वर्स नंबर 2, 12.2 भगवत गीता गूगल में डालो, वो निकाल के दिखाओ, बोले देखो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, बहस खत्म। आप अब जो आपको बोलना है वो आपकी मनोकल्पना है, अपने मन से जो बोलना है बोलिए, भगवान ज्योति है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान कण कण में है, भगवान ये है, भगवान वो है। लोग बोलते हैं मंदिर की क्या आवश्यकता है, जब भगवान तो कण कण में विराजमान है तो मंदिर की क्या आवश्यकता है? क्या लगता है आपको, क्यों मंदिर की आवश्यकता है अगर कण कण में भगवान विराजमान है? तो भगवान है कि नहीं कण कण में, कि खाली मंदिर में ही है, कण कण में? प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो लोगों से बोले कण कण में भगवान, प्रभुपाद बोले हाँ जब कण कण में है तो उस मूर्ति में नहीं है जो कण से ही बनी हुई है, तो जब कण कण में है तो उस मूर्ति में क्यों नहीं? तो लोग सोचने में अपना दिमाग खुजाते थे, इसे कह रहे अरे सच बात बोल रही है, कण कण में भगवान है लेकिन मूर्ति में नहीं मानते हम, भगवान तो सर्वत्र है, मंदिर में नहीं है। अगर सर्वत्र है तो मंदिर भी तो सर्वत्र के अंदर ही आता है, उसमें भी है, ही इज इन दैट डीटी ऑल्सो। अच्छा अगर सर्वत्र है तो हमें मंदिर की क्या आवश्यकता है, मंदिर ही क्यों जाएं हम, इस प्रशांति धाम क्लास में क्यों आए, मंदिर घर में नहीं मिल सकता क्या भगवान? हमें मॉल में नहीं मिलेगा, पीवीआर सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगा, सब जगह तो सर्वत्र है भगवान, तो क्यों नहीं मिलेगा? तो इसमें एक भक्त वर्णन करते हैं, कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, हवा तो सर्वत्र है, तो भर लो अपने ऐसे, क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ेगा जहां से टायर को हवा भरे जा सकती है। ऐसे ही मंदिर वो स्थान है जहां से वो कण कण की जो अनुभूति है उसको अनुभव करने के लिए मंदिर खोले जाते हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा हवा तो हर जगह है, लेकिन उस हवा को एहसास करने के लिए पंखा ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो हवा को एकत्रित करके हमें गर्मी से ठंडक का अनुभव कराता है। ऐसे ही संसार में कणकण में प्रभु है, पर वो प्रभु अपने को एकत्रित करके अपनी एनर्जी को और हमको उस मंदिर में बड़ी कृपा करता है। तो भगवान का जो जन्म है, जो कर्म है, वो बड़ा दिव्य है। इसको जो तत्व से जान जाता है कि कृष्ण पूर्ण विदम है, कृष्ण पूर्ण साकार भगवान है, उसका क्या होता है? कृष्ण अगले इस लाइन में कहते हैं कि जो व्यक्ति जान जाता है नेति ममेति सुवर्जना, वो वापस इस धरण में नहीं आएगा। त्यक्त्वम देहम, इस देह को त्यागने के बाद में पुनर्जन्म नहीं हो। चाहिए आपको पुनर्जन्म? पुनर्जन्म होगा क्या गारंटी कि प्रशांति धाम के पास मुनीर का में जन्म होगा आपका? कि प्रशांति धाम के पास पाम कोर्ट में जन्म होगा, कि डीडीए सोसाइटी में होंगे, कि आईटीएल में टीचर लग जाएंगे दोबारा से स्कूल में जाके, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी नहीं है तो उस अनगारंटेड लाइफ के लिए क्या प्रिपरेशन है हमारी, क्या तैयारी है? हमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितना अधिक लोग बोलते हैं कृष्ण के बारे में, प्रभु जी हमें मालूम नहीं है, हमारा मन नहीं लगता, जब हम जप करते हैं पूजा करते हैं मन भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि अभी हमने उनके बारे में जाना नहीं है। आपके ऑफिस से जब नोट मिलते हैं, मिलती ना सैलरी, तो उसको जो है ना बड़ा सब कुछ मालूम होता है ना, उसमें नींद आएगी उसको गिनने में कितने रुपए हैं। एटीएम से पैसे निकालो, कभी नींद आती? कोई देखा एटीएम में लेते लेते गिर गया? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कोई गिरे तो मिल जाए दान, कुछ पैसा मिल जाए, कोई नहीं गिरता। या फिर प्रसाद खा रहा हो कोई आदमी, पूड़ी हलवा सब्जी और पूड़ी मुंह में डाली और नींद इतनी आई धाम से गिर गए, होता है। लेकिन तभी गिरते हैं जब भगवान के आगे बैठते जप करने के लिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्यों गिरते हैं? रीजन क्या है? इंटरेस्ट नहीं है। जहां हमारा इंटरेस्ट है खाने में, शॉपिंग में, एटीएम से पैसे लेने में, बैंक के चेक डालने में, ऑफिस में, हमें नींद नहीं आएगी। नींद हमें वहीं आएगी जहां हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? कहते हैं डिटेलिंग इज अ सिम्टम ऑफ लव। जहां प्रेम है वहां डिटेल निकाली जाती है। ना भी पता हो तो मन रात को घूमता रहता है। जैसे मुझसे अगर कोई रात को क्वेश्चन पूछ ले, कभी कभी लोग ऐसे पूछ लेते हैं, लोग सोचते हैं मैं तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हूँ, रात को 11:30 बजे फोन, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कहा हरे कृष्णा, मुझे लगता है इमरजेंसी है, फोन किया रात को। प्रभु जी अर्जुन की 4 पत्नियों के नाम क्या थे? अभी 4 पत्नियां ढूंढो, महाभारत पढ़ो, गूगल डालो, कुछ भी करो, फिर मुझे बताना पड़ता है। देखो उनकी 4 पत्नियां थी, एक द्रौपदी थी, फिर एक उनकी सुभद्रा थी, एक उलूपी थी, एक चित्रांगदा थी। अच्छा अच्छा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। काट दिया फोन। फिर 10 मिनट बाद फोन, प्रभु जी उन्होंने 4 शादियां करी, मना नहीं कर सकते थे? 4 क्यों करी? आज तो एक से ही इतना मुश्किल है साथ में रहना, और 4-4 के साथ कैसे रहते थे? अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग रात में 11:30-12 बजे। तो मुझे घर वाले कहते हैं कि आप ना एक टाइम फिक्स कर दो, 9:30 के बाद स्विच ऑफ कर दो फोन। मैं कहा अगर किसी को कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो इमरजेंसी के कारण मैं फोन बंद नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं? ज्यादातर लड़ाई झगड़े रात को 10 बजे के बाद ही हो, तो घर से फोन, प्रभु जी देखिए मान नहीं रहे। तो मैं बोलता हूँ मान जाओ प्रभु, सुबह तक मान जाओ, सुबह लड़ लेना, रात गुजर जान तो मैं आऊंगा घर पे आपके। तो बहुत लड़ाई झगड़े संसार में, ईगो टेस्टल्स हैं, ये सब प्रॉब्लम है। क्यों? भगवान को न जानने के कारण। अगर एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब में पानी भरा हुआ है, उस तालाब में आप एक पत्थर मारो ऐसे टपक, तो क्या होगा? गोल गोल चक्रे बनेंगे ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। और फिर दूसरा पत्थर कोई और मारे दूसरी जगह पे, तो फिर कंसेंट्रिक सर्कल बने, एक यहां डाला एक यहां डाला, तालाब में ऐसे ऐसे चक्र बनेंगे और आपस में टकराएंगे। लेकिन अगर हमें इन चक्रों को टकराना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है आपसे, प्रश्न। हाँ, दूर दूर डाले तो दूर से आके टकराएंगे, कुछ देर बाद आकर टकराएंगे। एक ही पत्थर मारे या फिर एक ही जगह पर, वन प्लेस, यहां मैंने डाला, दूसरी पत्नी भी यहां डाले, बच्चा भी यहां डाले, तो सर्कल बड़े 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 होंगे लेकिन टकराएंगे नहीं। व्हाट डज दिस से? ये एनालॉजी क्या सिखाती है? इस दृष्टांत से पता चलता है पत्नी का इंटरेस्ट है कि मैं तो है ना वो देखूंगी भाभी जी छत पर है या घर पे, जो भी है, भाभी जी छत पर है समथिंग ऐसे, भाभी जी छत पर है ना, क्या है, कहां है भाभी जी? मंदिर? घर पर, भाभी जी घर पर है। और छत पे कौन है? देवर। जैन साहब मजे ले रहे, कह रहे देवर। हाँ जीजा जी छत पर है, जो भी एक, कोई छत पे है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, ये सब जो देखना चाहते हैं एक जगह यहाँ डालते हैं। और दूसरा व्यक्ति है हस्बैंड को आईपीएल मैच देखना है, क्रिकेट देखना, उसका सी है। तो दोनों के जब अलग अलग जगह गिरेंगे पत्थर, तो बड़े बड़े चक्रे बनेंगे और आपस में टकराते रहेंगे। इसीलिए मन मुटाव है परिवार में, हस्बैंड ससुराल नहीं जाता अपने, ये वाइफ ससुराल में ही रहती है तो इसको ससुराल वाले पसंद नहीं आते हैं। क्यों कारण है? क्योंकि दोनों के अलग अलग ये टकरा रहे हैं और ज्यादातर फैमिलीज में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या करना है? पत्थर को एक ही जगह डालो, बोले तेरा जीवन बोले कृष्ण के लिए, और तेरा जीवन बोले मेरा भी कृष्ण के लिए, हस्बैंड भी कहे कृष्ण के लिए, पत्नी भी कहे कृष्ण के लिए, बोले हम बने तुम बने कृष्ण के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं। एक दूसरे के लिए शुरुआत में बनते हैं, फिर होते हैं हम बने तुम बने सूजे के लिए, सूजा डालते हैं तो दूजे का टाके कृष्णमयी हो जाए ना लाइफ, इट्स सेंटर फोर्स इज कृष्णा, तो फिर लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। अब कभी लड़ाई नहीं होती है मेरी फैमिली में, क्यों नहीं होती लड़ाई? वाइफ से बोला कि क्या खाना खाएंगे, बोले जो कृष्ण को पसंद हो, तो बना के ले आती है। मान लीजिए उसने पुलाव बना दिया, आलस है पुलाव ही बना दिया भगवान के लिए, कुछ नहीं बनाया, ठीक है पुलाव खाने बैठे उसमें नमक नहीं है। अभी कोई नॉर्मल व्यक्ति हो जो कृष्ण के लिए जीवन नहीं जीता, ये बनाया तुमने तेरी तो ऐसी की तैसी, उठा के फेंक देगा, मन नहीं खाना था ये पुलाव वाला, इसीलिए तुमसे शादी की, ये क्या हो। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त है तो वो जानता है इस खाने को खाने से पहले मैंने क्या किया, भगवान को भोग लगाया। इसका मतलब ब्रह्मांड नायक कृष्ण जिनका जन्म और कर्म दिव्य है, उन्होंने भी इस पुलाव को खाया और बिना नमक के खाया, खाया कि नहीं? और अब मैं जो हूं इसके ऊपर दादागिरी दिखा रहा हूं, जो भगवान खा सकते हैं, मैं इतना बड़ा हो गया भगवान से भी ऊपर कि मैं नहीं खा सकता, तो वो कुछ बोलेगा? बोलेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा बनाया आपने, प्रसाद बहुत अच्छा है, देख लेना अगर तुम्हें पसंद थोड़ा नमक डाल लेना, वैसे सब ठीक है। लड़ाई तो नहीं होगी ना इसमें, बोलने का तरीका है। कहेगी वो मेरे से गलती हो गई, भगवान ने बिना नमक के खाया, वो भी ये नहीं कह रही वो आपने नमक के, ओ भगवान ने बिना नमक के खाया गलती हो गई, कल से मैं एक्स्ट्रा नमक भोग लगा दूंगी, है ना। तो ये भावना जब होती दोनों में आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों कृष्ण के लिए जी रहे हैं। वो कह रहा है मैं भगवान का भोग खा लूंगा, वो कह रही नहीं मैं भगवान को बिना नमक के कैसे लूं, दोनों भगवान के लिए बात कर रहे हैं, दोनों ये नहीं कह रहे मेरा और तेरा, तेरा और मेरा, तो लाइफ इज डिफरेंट। तो जिस फैमिलीज में कृष्ण सेंटर है वो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं है, और जीते जी तो सुख है। और शरीर त्यागने के बाद भगवान गारंटी ले रहे हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम मेति ममेति सुअर्जुन। भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य है। भगवान के भक्त है अर्जुन, जानते हैं आप अर्जुन के बारे में, भगवद गीता के मेन हीरो है, कवर पेज से कभी भी उनका फोटो नहीं हटाया गया 5000 साल से, कवर पेज पर मैगजीन पे होती है ना एक मॉडल होती है, एक ही मॉडल सस्टेन कर रहा है पिछले कई वर्षों से, 5000 साल से चेंज नहीं किया है अर्जुन को। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, एक बार गलती से इस कौन के कुछ भक्तों ने हटा करके कृष्ण का गाय के साथ फोटो लगा दिया गीता पे, गाय के साथ फोटो लगा दिया, तो भगवान के जो प्रभुपाद शिष्य थे इतने बड़े भक्त थे, प्रभुपाद जी ने बहुत डांटा भक्तों को, बोले ये क्या है, ये आपने तो पूरी की पूरी भगवद गीता ही बदल दी, इसमें गाय कहां से आ गई महाभारत के युद्ध में। तो है ना प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद स्टॉक में नहीं थी फोटो कोई बढ़िया, तो हमने ये गाय वाली फोटो, गाय और कृष्णा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर घर में खाने को नहीं होगा तो क्या पत्थर खाने लग जाओगे? दोनों चीजों में कितना भेद है, मतलब कोई और फोटो कृष्ण का वृंदावन का रूप भागवत के लिए है, भगवत गीता का मतलब है महाभारत जैसे युद्ध के अंदर जो परेशानियों में विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ व्यक्ति है ना, जिसके जीवन में टेंशन और डिप्रेशन है कि कहां जाऊं और कहां जाऊं बस, उस व्यक्ति के लिए गीता है। इसमें रिलैक्स नहीं है, ये वो समय है जब मरने काटने की स्थिति हो। लोग सोचते हैं भगवत गीता तब पढ़ेंगे जब बिल्कुल रिलैक्स टाइम होगा, रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, फिर हमारे सरकार कहेगी तुम हमारे काम की नहीं, बच्चे कहेंगे आप हमारे काम के नहीं पापा, आप वॉक करने जाया करो, तब हम शाम को गीता पढ़ेंगे पेड़ के नीचे बैठ के। नहीं, गीता तभी जरूरी है, तब तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन तब भी पढ़ना है जब स्कूल की टेंशन है, तब भी पढ़ना है जब हम ऑफिस की टेंशन में। तो ऐसे एक भक्त है भगवान के अर्जुन, अर्जुन का विवाह हुआ था द्रौपदी के साथ में, आप जानते हैं मछली की आंख में उन्होंने तीर मारा और उन्होंने द्रौपदी को प्राप्त किया, द्रुपद की पुत्री को। और जब वापिस आए तो बिन देखे कुंती माता को उन्होंने कहा आज हम आपके लिए कुछ उपहार लेके आए। माँ ने बड़ी प्रेम में कह दिया पांचों भाई उपहार बांट लो आपस में, तो वो हैरान हो गए पांच कैसे पत्नी को बांटे। तब पता चला फिर सभी को नियम दिया गया कि आप लोग एक समय पर एक व्यक्ति पत्नी के साथ रहेगा, तो सबके लिए कुछ 10 महीने या 1 वर्ष नियुक्त किया गया। 1 वर्ष ये पांडव में से एक अर्जुन रहेंगे द्रौपदी के साथ, 1 वर्ष युधिष्ठिर रहेंगे, और उस काल में जिस समय द्रौपदी एक पांडव के साथ में, बाकी 4 पांडव उस स्थान में प्रवेश भी नहीं कर सकते, और गलती से अगर किसी राजनीतिक कार्य से प्रवेश कर भी लिया तो उस व्यक्ति को फिर वनवास लेना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने नियम बनाया था। और एक बार किसी कारणवश अर्जुन जो थे वो बाहर बैठे थे और युधिष्ठिर अंदर द्रौपदी के साथ थे, और धनुष जो था उनका जो गांडीव था वो अंदर था राजमहल में, अर्जुन बाहर बैठे थे। इतने में ही उनके जो राज्य में 2 लोग लड़ते हुए आए, बोले हमें न्याय चाहिए अर्जुन, आप गांडीवधारी न्याय करिए। तो अर्जुन बोले गांडीव तो हो पहले न्याय करने के लिए, गांडीव तो अंदर रखा है। अंदर गया और सहवास की स्थिति में मैंने युधिष्ठिर को और द्रौपदी को देख लिया तो क्या होगा, तो मेरे को या तो जान देनी पड़ेगी या वनवास में जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो अंदर गए गांडीव को उठाने, उन्होंने कहा राजनीतिक कार्य मेरे वनवास से भी ऊंचा है जिसमें प्रजा खुश रहे। तो अंदर गए बिना कुछ देखे, गांडीव उठाया, तीर चलाया, उस केस को सॉल्व किया और वापस आके युधिष्ठिर कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई युधिष्ठिर महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके उस सहवास समय में अंदर प्रवेश कर लिया, इसलिए मुझे माफ करिए, मुझे जाने दीजिए। तो है ना, युधिष्ठिर कहते कैसी बात कर रहे हो, एक वर्ष हम एक साथ में रहते हैं, ऐसे ही बहुत ही कम समय होता है जब हम कोई बहुत ही निजी स्थिति में हो, लेकिन अभी तो हम आराम से बैठे थे राजमहल में, तुम अंदर आए ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं, नियम तो नियम है, लोग कहेंगे जो नियम बनाने वाले वही नियम तोड़ देंगे तो फिर कोई नियम पालन नहीं करेगा। इसीलिए जो जितना बड़ा भक्त बनता है, जो जितना बड़ा लीडर बनता है, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सही आचरण रखे, वरना क्योंकि लोग उसको देखेंगे और कहेंगे ये तो खुद ही पतित है, तो वो भी पतित हो जाए। यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तव एवितरो जना सायत प्रमाणात कुरुतु लोकस तत अनुवर्तते। इस लोक में लोग उन्हीं श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं जो आगे होते हैं। अब श्रेष्ठ व्यक्ति हो, मान लो मैं प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन प्रवचन देने के बाद मैं नीचे जाकर सिगरेट पीने लग जाऊं, तो फिर लोगों का कोई गीता क्लास में आएगा प्रशांति धाम में, कह रहे प्रभु जी बोलते इतना खुद ही खा। तो ये व्यक्ति को भक्ति के साथ बड़ा मुश्किल है। भक्ति जब करो तो एक तो अपने लिए, और जब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं जीवन, तो हर एक व्यक्ति की आंखें हमारे ऊपर होती हैं, हमें वो जीवन सच में जीना पड़ता है जो जीवन हम बोल रहे होते हैं, और सच्चा भी वही है, व्हाट यू प्रैक्टिस दैट यू प्रीच, जो आप जीवन में करते हो वही बोलना चाहिए। तो अर्जुन निकल गए, और जब निकले तो उनको युधिष्ठिर कहते हैं एक काम करो, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और अभी हम राजा बनने वाले हैं, तो आप एक काम करो कि आप सभी लोकों में जाओ, नीचे के लोक, ऊपर के लोक और भारत की सभी दिशाओं में, और एक सहमति पत्र ले लो कि सब लोग हमारे साथ में रिश्ता जोड़ेंगे, हम राजा रहेंगे युधिष्ठिर और सभी लोग हमारे सेना में रहेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन जाते हैं नागलोक में, नीचे नागलोक के पाताल में, जहां वासुकी नाग रहता है जो समुद्र मंथन के समय इस्तेमाल किया गया। तो वहां जब पहुंचते हैं नागलोक में, तो नागलोक में स्वयंवर चल रहा होता है, नागलोक के जो राजा है उनकी पुत्री उलूपी का विवाह हो रहा होता है। तो उलूपी जो होती है वो उनको ये निर्णय लेना होता है कि मैं किसके गले में वर माला डालूंगी, और नागलोक की कन्याओं के लिए बड़ी छूट है कि जिसके भी गले में वरमाला डालते हैं वो उसका पति हो जाएगा, और कोई विशेष उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए। तो उलूपी ने अर्जुन के गले में डाल दी। तो वहां पर एक चांडक नाम का व्यक्ति था जो बहुत प्रेम करता था उलूपी से, उसने कहा अरे ये तो इससे विवाह कर ली। उसने कहा अरे कोई भी पृथ्वी का व्यक्ति नागलोक में विवाह नहीं कर सकता है, इसको मार डालूंगा अर्जुन को। तभी वहां पर वासुकी नाग देव आते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं आप कैसी बात करते हो चांडक, शायद आपने परंपरा सुनी नहीं है, कुंती भी नागलोक की कन्या है, कुंती भी नागलोक की कन्या है। इसीलिए जब भीम को पानी में फेंक दिया गया था तो नागलोक में विष पीने की बजाय 10,000 हाथियों का अमृत पीकर बाहर आ गया था भीम, सभी शक्ति आई उसमें, नागलोक की कन्या है और अर्जुन भी नागलोक का ही हुआ, तो इसलिए इसके विवाह करना ठीक है। तो उलूपी के साथ विवाह हुआ, और कई वर्ष वर्णन है महाभारत में उलूपी और अर्जुन साथ में नागलोक में रहे, और एक पुत्र भी प्रकट हुआ उनके, पुत्र हो गया। उसके बाद में वो कहते हैं मुझे तो सहमति पत्र के लिए घूमना था सब जगह, पूरे भारत में मैं यहाँ कहाँ गया। तब फिर अर्जुन आते हैं और सबसे पहले जाते हैं वो मणिपुर राज्य में, मणिपुर ईस्ट जो हमारा है और ईस्ट इंडिया जो इस टाइम है हमारा, उस जगह मणिपुर राज्य में जाते हैं। मणिपुर राज्य बॉर्डर था कि अगर इसको हमने अपना दोस्त बना लिया, अर्जुन ने कहा, तो फिर कोई भी सेना प्रवेश नहीं कर सकती। तो जब मणिपुर राज्य में पहुंचे तो वहां पर एक देवी का मंदिर था, कामाख्या देवी के मंदिर में अर्जुन ने कहा चलो यहाँ आया हूं तो देवी को प्रणाम कर देता हूं। वैसे तो कृष्ण के अलावा वो किसी की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा सम्मान सबका करना चाहिए, तो देवी को देखा तो प्रणाम करने लगे। तभी इतने में वहां का मणिपुर का राजकुमार आ गया, कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। अर्जुन कहते पहले मैं जाऊंगा, दोनों धनुर्धर थे, दोनों के पास धनुष बाण थे, कहा पहले युद्ध हो जाए, देखते हैं कौन कितनी शक्ति है, जो हरा देगा वो जाएगा। कह रहे अरे बालक, अर्जुन कहते हट जा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो छोटा सा बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा। कहता है भले ही मैं 20 वर्ष का हूं लेकिन मेरे युद्ध सैन्य बल शक्तिशाली है, आओ मुझसे युद्ध करो। तो वो क्या करते हैं कि एक पेड़ पर वो एक नेत्र बनाता है बालक, कहता है चलाओ इस पे तीर, देखो तुम्हारे शस्त्र बल में कितनी शक्ति है। तो गांडीव निकालकर तीर चलाने के लिए अर्जुन कहते हैं देखो वैसे तो मेरा तीर बड़ा शक्तिशाली है लेकिन बालक मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। कहता चलो कोई बात नहीं पहले मैं करता हूँ, और अपना तीर निकाल के वो मारते हैं तो बिल्कुल आंख में जाके टकराता है, पेड़ पर एक आंख बनाई थी उसमें जाके लगा। अर्जुन से कहते हैं बस अब तुम हार गए, अब मैं पहले दर्शन करने जाऊंगा, क्षत्रिय होकर हार गए तुम्हारा नाम बदनाम होगा कि पांडु पुत्र हार गए अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं ये देखो मेरा तीर, क्रोध दिला दिया, उन्होंने भी तीर चलाया, क्या हुआ राजकुमार का तीर हट गया और अर्जुन का तीर वहां जाके लग गया। अर्जुन बोले आप बताओ कर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने पहले जीता मैं, तुमने तो उसके बाद में तीर चलाया है, तो तुम हारे हो मैं दर्शन करने जाऊंगा। तो अर्जुन कहते हैं ऐसे कैसे जाओगे, पहले मैं जाऊंगा। तो दोनों तलवार निकाल लेते हैं और तलवार से लड़ाई होती है, लड़ाई करते वक्त पता चलता है राजकुमार के वस्त्र फट जाते हैं, तो पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं राजकुमारी थी। मणिपुर के राजा ने शिवजी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरे घर में एक ही संतान हो, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए। तो शिवजी ने कहा तुम्हारे घर एक वरदान देता हूँ, एक संतान होगी, संतान में पुत्री हो गई। बोले मैंने तो वर मांगा था कि कोई मेरे राजपाट को संभालने वाला हो, ये तो पुत्री हो गई। तो उन्होंने पुत्री को पुत्र के समान बनाया। आजकल भी ऐसा होता है, कई लोगों की लड़की होती है कहते हैं हमारी लड़की नहीं है लड़के के समान है। आप समान रखिए परंतु लड़की को लड़की का भाव, स्त्री का भाव, स्त्री के अंदर बहुत सारी विशेषताएं। जननी कौन होती है, पुरुष की स्त्री, स्त्री उसके अंदर भाव नहीं होगा तो जननी बनेगी कभी? आपको भाव देना पड़ेगा, उसके अंदर वो कोमलता है, उसके अंदर वो प्रेम है, उसके अंदर वो ममत्व है। माँ जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति फादर डे से ज्यादा मदर डे को बिलीव करता है, बोले मदर डे बनाओ माँ के लिए, है ना, माँ माँ माँ। तो इस तरह से माँ इतनी इंपॉर्टेंट है, तो कौन बनी माँ, स्त्री थी तभी तो माँ बनी, लेकिन हम बोले नहीं हमारी पूरी लड़की तो लड़के के समान है तो वो माँ कैसे बनेगी। तो यही राजकुमार मणिपुर के राजा ने किया था, अपने लड़के को लड़की बना दिया, लड़की को लड़की बनाया। तो ये कहती है जो लड़की थी पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि मुझे स्त्री बनना चाहिए, तो लेकिन स्त्री बनूं कैसे, 20 साल तो लड़के के रूप में रही हूं। तो कामदेव और रति माता को प्रार्थना करती है और कामदेव रति आके कहते हैं हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम स्त्री बन जाओ, वो स्त्री बन जाती है। स्त्री बनने के बाद मन में भाव आता है कि विवाह करूंगी तो अर्जुन से ही करूंगी, इतना शक्तिशाली है। अर्जुन आते हैं मणिपुर के राजा से मिलने, उनके स्थान में रुकते हैं, तो कहते मैं तो विवाह आपसे करूंगी। अर्जुन कहते अरे अभी अभी तो विवाह करके आया हूं नागलोक से, ये दोबारा मैरिज प्रपोजल आ गया। खरे अरे ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, तो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनका जन्म और कर्म दिव्य है, दिव्य कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम मूर्ख हो, करे क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी बार बार स्मृति चली जाती है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी तुम्हारी स्मृति चली गई थी, तुम लड़ने को तैयार नहीं थे। जब तुमने गीता का ज्ञान सुना तो अंत में कहने लगे नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मेरी नष्ट मोह हो गया है और स्मृति वापिस आ गई है, लेकिन अभी फिर स्मृति चली गई तुम्हारी। तो बोले कि क्या करूं कृष्ण, बोले कृष्ण ने कहा तुम्हें ये पता नहीं मणिपुर के राजा क्या एक नियम है, लड़की विवाह करने के बाद ध्यान को छोड़ के नहीं जाती, यही रहती है। कहले फिर क्यों डरते हो, इसको यहीं रहने दो, विवाह कर लिया तुम इसको यहीं छोड़ दो और तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में ये आने नहीं वाली है, लेकिन तुम्हारी तो ससुराल बन जाएगी तो तुम्हें कोई अलग से स्पेशल इनविटेशन भी नहीं देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी, ससुराल वाले प्रोटेक्ट करके रखेंगे कंट्री को। बहुत सुंदर उनको निर्णय दिया, विवाह हो गया। उस स्त्री का नाम था चित्रांगदा, जो कि अर्जुन की तीसरी पत्नी बनी, द्रौपदी, उलूपी और चित्रांगदा। तो चित्रांगदा जो थी उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र का नाम था बब्रुवाहन। लेकिन किसी कारणवश जो ये चित्रांगदा थी इनको लोगों ने भड़का दिया कि आपके जो ये पति है ना इनका तो पहले से विवाह हो रखा है, उलूपी से ज्यादा प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते। और अर्जुन को भी भड़का दिया कि ये जो चित्रांगदा इसके पहले से कई लोगों के साथ में संबंध है। अर्जुन भी भ्रमित हो गए और चित्रांगदा को छोड़ करके चले गए। जब वो चले गए तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे तुम कैसे हो, जिस चीज को मैंने करने के लिए कहा तुमने उसके ऊपर डाउट कैसे कर लिया। जैसे भगवान ने ये गीता दी है, क्यों दिया है? ताकि हम जाने भगवान हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो मन में मुझको रखो, मद याजी माम नमस्कुरो, मेरी पूजा करो मुझे नमस्कार करो। इसके बाद भी लोग गणेश जी की पूजा करेंगे, शिव जी की करेंगे, सबकी करेंगे। बोले सबकी अपनी अपनी मनोभावना है। सातवें अध्याय में भगवान ने काट दिया। भगवान कहते हैं कि जो लोगों की माया से बुद्धि हरी होती है वही लोग अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए। कृष्ण को पूजने से अगर सब पूजा हो जाती है, हम सबका अपमान नहीं बोल रहे हैं, यहां पूजा की बात हो रही है। एक को पूजो बाकी सबका सम्मान करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेकिन नहीं, लोग बोलते नहीं हम तो सबको बराबर से कहेंगे, इनके नवरात्र रखेंगे, उनका सोमवार रखेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी रखेंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, वो यहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, और फिर एट लास्ट कहीं नहीं पहुंचते। फिर कहते हैं टेंशन बहुत है लाइफ में। टेंशन तो होगी, आपने खुद की क्रिएटेड है। आपके पिता जीवन में एक होता है, अनेक नहीं होते हैं। और कृष्ण का मत परतरम नान्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है संसार में। 7.7 सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान ने कहा। तो फिर हम जब भगवान की वाणी को नहीं मानेंगे तो हम अर्जुन की तरह फंस जाएंगे। अर्जुन फंस गए थे, छोड़कर चले गए। और चित्रांगदा ने कहा बब्रू वाहन से अपने बेटे से, तेरे जीवन का एक ही कर्तव्य है, क्या? तुझे है ना अर्जुन को परास्त करना है। कहा मेरे पिताजी कौन है? कह रहा वो तुझे बाद में बताऊंगी, बस तुझे जीवन का एक लक्ष्य बना। बब्रुवान बड़ा शक्तिशाली बन गया। और एक दिन जब 20 साल गुजर गए, बब्रुवान बड़ा हो गया, गबरू बन गया बब्रू। जो बब्रुवान था वो बड़ा गबरू हो गया। तो उस समय इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने कहा हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जिन जिन लोगों से आप संधि करके आए हैं उन्होंने सच में संधि करी है कि नहीं, इस बात का प्रमाण इस घोड़े से होगा। घोड़े के नीचे एक पट्टा लगाएंगे और कहेंगे युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा है, इसको कोई ना ले जो उनका सहयोगी है, जो रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। आराम से घोड़ा चलता हुआ नाग लोग यहां वहां जा रहा था, पहुंच गया गलती से मणिपुर। मणिपुर पहुंचा तो बब्रुवान गबरू जवान अपने एक्सरसाइज कर रहा था और उसने देखा एक घोड़ा घूम रहा है और उसमें पांडु लिखा है। अरे मिल गए, इन्हीं को तो परास्त करना था। पकड़ के घोड़ा बांध दिया पेड़ पे। तो वहीं अर्जुन आदि सब पहुंचे, भीम और सब सेना। कहा बालक तुमने क्यों पकड़ लिया घोड़ा? कहा कि हटो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बताओ अर्जुन कहाँ है? 20 साल से मेरी मां रात दिन उसका गुणगान गा रही है, उसी को मारना है, बस परास्त करना है। तो अर्जुन बोला तुम्हारी क्या दुश्मनी उससे? कह रहा वो मुझे पता नहीं, मेरी माँ का ऑर्डर है, मारना है, परास्त करना है उसे। कह रहे तुम क्या बालक बातें करते हो, अर्जुन को जानते हो? अभी 16 अक्षौणी सेनाओं को परास्त कर उसने कुरुक्षेत्र का युद्ध में विजय प्राप्त करी, केशव उनके सदा साथ रहते हैं। कहा केशव हो या जो भी हो, बब्रुवान से कोई नहीं, वो अपना बहुत अहंकार शक्तिशाली था। तो उसने अर्जुन कहते हैं कि अच्छा मैं ही अर्जुन हूं। कहा तुम इतनी बातें कर रहे थे पहले क्यों नहीं बताया? लड़ाई चालू कर दी, निकाल के तलवार, लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। काफी देर तक युद्ध चला परंतु युद्ध में अर्जुन हार नहीं रहे थे, धनुर्धर थे गांडीव से। तो बब्रुवाहन ने कामाख्या मंदिर जहां से कहानी प्रारंभ हुई थी कथा, वहां पर जो भीष्म पितामह की माँ थी गंगा, गंगा का पुत्र था गंगा पुत्र भीष्म, तो वो जो गंगा माँ थी वो कामाख्या मंदिर में प्रवेश करके और बब्रुवाहन को एक तीर दी कि इस अगर अर्जुन कभी तुमसे हार जाए और तुम जीत रहा हो और तुम हार रहे हो तो इस तीर से तुम उसको मार डालना। तीर मिल गया, गंगा जी ने दिया था, गंगा मैया ने। और उस समय बब्रुवाहन हार रहा था, उसने वो तीर उठाया और अर्जुन को मार दिया। क्या हुआ अर्जुन का? मर गया। समाप्त, शक्तिशाली अर्जुन समाप्त हो गए। महाभारत में प्रसंग है कि अर्जुन की गर्दन कट के धड़ से अलग गिर गई। अभी तो सारा रोना धोना प्रारंभ हो गया, कुंती पहुंच गई वहां पर और द्रौपदी पहुंच गई और भीम आ गए, युधिष्ठिर आ गए, सभी लोग वहां पहुंच गए और कर्ण का बेटा भी था वहां पर वृषकेतु, तो वो वृषकेतु को भी उसने मार दिया था। सब मार डाले थे उसने, सेनापति सैनिक अर्जुन अर्जुन सब मार डाले बब्रुवाहन ने। और अपनी माँ को बताया कि माँ मैंने हरा दिया। कहा कहाँ है अर्जुन? कहा वो पड़े देखो, धड़ है वो गर्दन पड़ी है, वो शरीर पड़ा है। शरीर क्या किया? परास्त करने को कहा था, मारने को थोड़ी कहा था। कह रहे क्यों माँ? कह यही तो तुम्हारे पिता थे। कह रहे अरे अब काहे को बता रहे हो, जब बचपन से पूछा तब बताया नहीं, अब बताया, यही पिताजी थे। बोले अब क्या कर सकता हूँ? बोले अब पिता हत्या का पाप लगाए, अब मैं अपने शरीर को आत्मदाह कर लूंगा। लकड़ियां इकट्ठी करके बैठ गया उस, बोला अब मैं आत्मदाह कर जल जाऊंगा, खुद ही शरीर का त्याग करूंगा। लेकिन हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इस कथा की? क्योंकि कृष्ण है जहां पर, उनकी लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण आए और देखा कि गंगा माई हंस रही है और कुंती माता रो रही है। कह रहा गंगा माई सब रो रहे, तुम हंस रही हो, क्या कारण है? गंगा कहती मैं ही तो कारण हूं अर्जुन की मृत्यु की। कह रहा तुमको ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई अर्जुन से जो कि मारा? कहा अब मेरे पेटे भीष्म को इसी अर्जुन ने सर सैया पर तीरों के सैया पे लिटाया था, तब ये बड़ा प्रसन्न हुआ था, आज इसको कटा हुआ देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हो रही। अरे कैसी माँ हो, कम से कम तुम्हारा भीष्म जो था उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसको मरने के बाद में वो कैलाश पर्वत चला गया, तुम जाकर उससे कई बार मिलती हो, कैलाश की गंगा तो ऊपर जाती थी कैलाश तक, बोले तुम तो जाके मिल लेती हो पर इस माँ का क्या होगा, अर्जुन चला गया ये कभी मिल नहीं पाएगा अपनी माँ से। तो बोले तुम्हें एक माँ का, और चलो मान लो भीष्म के आगे तो अर्जुन थे, अर्जुन के आगे जो बभ्रुवाहन और अभिमन्यु थे, लेकिन भीष्म के मरने से समाप्त नहीं हुआ हमारा कुल, लेकिन अर्जुन के मरने से और बभ्रुवाहन के मरने से और अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका है, कुल ही समाप्त हो गया, और कर्ण का बेटा वृषकेतु भी समाप्त हो, सब मर गए, और इतनी बड़ी विशाल सेना पहले ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारी जा चुकी है, तुमने क्या किया माँ? कहा माँ अगर तुम मार सकती हो तो जिंदा भी कर सकती, कोई तरीका बताओ? कहा एक तरीका है कि अगर कोई नाग लोक में चला जाए और वहां पर नागमणि होती है वो ले आए तो वापस अर्जुन को जीवित किया जा सकता है। तो चित्रांगदा बड़ी प्रसन्न हुई, बोले अरे अरे नागलोक की तो कन्या उल्लिपि तो अर्जुन की पत्नी है, ये किसी को पता ही नहीं अभी। कह रहे अच्छा एक और शादी हो गई थी अर्जुन की? कह रहे हाँ, बोले वो तो मैत्री करने गया था, क्या क्या करके आया था, शादी भी कराया मैत्री के साथ। तो उल्लिपि को लेने के लिए पहुंचे और बभ्रुवाहन भी गए साथ में, उल्लिपि को पता चला तो उल्लिपि भी आई और फिर वो मणि आई, मणि से फिर अर्जुन को जीवित किया गया। तो वहां पर जब अर्जुन जीवित हो गए वापस, सभी पांडव प्रसन्न होकर गले लगाने लगे, तो भीम कहते हैं अरे अर्जुन तुमने तो हमें डरा ही दिया था, अभी तुम चले गए थे हमको छोड़ करके। तो है ना अर्जुन कहते हैं जहां कृष्ण है वहां डर कैसा, मतलब मृत्यु पर भी, मृत्युर मृत्युर नमामि अहम, भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु को भी जो खा सकता है वही है कृष्ण, मृत्युर मृत्युर नमामि अहम, हम उसको नमन करते हैं जो मृत्यु के भी ऊपर बैठ जाता है। ध्रुव महाराज की जब मृत्यु आई तो मृत्यु आकर कहती है ध्रुव मैं जानती हूं कि आपने 6 महीने की उम्र में कृष्ण को प्राप्त किया था, 5 साल की अवस्था में 6 महीने में कृष्ण को प्राप्त किया था, और आपने 36,000 सालों का राज्य भी प्राप्त किया, आप 36,000 साल से राजा बने बैठे हो, मृत्यु तो लेकिन आएगी, जातस ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बैठी है विमान में मृत्यु के, तो ना एक पहाड़ पे खड़े थे ध्रुव महाराज, 36,000 साल से राजा बने बैठे थे, मृत्यु ने जैसे ही प्रणाम किया उन्होंने समय देख करके ध्रुव ने मृत्यु के सिर पे पैर रखा और गरुड़ विमान में बैठ गए। मृत्यु कहती ये क्या हुआ? तो वो कहते हैं मैं किसका भक्त हूं, मृत्युर मृत्युर नमामि हम, जो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते ऐसे भगवान है केशव, और उन्हीं का प्राकट है नरसिंह। इसीलिए गणेश की पूजा करने से हो सकता है हमारे विघ्न कटे, हो सकता है ना कटे, भौतिक विघ्न कट भी सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं कटेंगे, लेकिन नरसिंह कैसे हैं मृत्युर मृत्युर नमामि हम, मृत्यु भी डरती है। तो कृष्ण कहते हैं वहां पर जब भीम ने कहा कि अर्जुन ने बोला भीम आप कैसे भयभीत हो गए, जहां कृष्ण है वहां डर कैसा, वहां डरने की जरूरत नहीं, जहां पर कृष्ण है वहां डरने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा मुख अग्नि है, जब हम ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं अग्नि कुंड में स्वाहा स्वाहा केले डालते हैं, फल डालते हैं, क्यों डालते हैं? भगवान कहते हैं भागवत के 5वें अध्याय में अग्नि के मुख से मैं क्या करता हूं, सब कुछ ग्रहण करता हूं, इसका मतलब अग्नि मेरा मुख है। तो भगवान ने कहा अग्नि मेरा मुख है, इसके अंदर डर भी घुसने से पहले सोचता है, भय भी तो कोई व्यक्ति है जो सबको भयभीत करता है, भय घुसने से पहले सोचता है भगवान के मुख में, कहता कैसे जाऊं क्योंकि ये तो मृत्यु के भी जल मारने वाले हैं, इस संसार में भय मृत्यु उसको भी जन्म और मारने वाले हैं केशव। इसीलिए भगवान ने 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, निकालिए 18.66 क्या कहते हैं भगवान, पढ़िए जरा 18 अध्याय का 66 श्लोक मिला सबको, पेज 607 उसमें क्या कहते हैं पढ़िए जरा, कोई जोर से माइक ले सकते हैं। हाँ हिंदी में पढ़िए, समस्त
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत।
हाँ माथुर प्रभु जी को मिला नहीं क्या? ढूंढिए 18.66 मिली। आप पढ़िए जरा माथुर प्रभु जी, आप ही पढ़िए जरा।
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत।
डरो मत समस्त पापों से। मान लो जाने अनजाने में भी कोई पाप हुआ, कृष्ण कहते बस मेरी शरण में आ जाओ और कुछ नहीं करना, लेकिन सब कुछ त्याग कर, समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर आना पड़ेगा। ये नहीं मैं सब कुछ करता भी रहूं और इधर भी आता रहूं, भगवान कहेंगे डुप्लीसिट रोल नहीं चलेगा इधर। 81 साइड। यस प्रभु। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, समस्त प्रकार के धर्मों का क्या मतलब है? समस्त प्रकार के धर्मों का मतलब है कि जो कैटर धर्म है, नकली धर्म, पहले तो शारीरिक धर्म, इस शरीर से उत्पन्न होने वाले धर्म, जैसे मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हम सब कौन है, पुरुष है कि स्त्री है? कह रही है स्त्री है। हाँ आत्मा है, हम ना पुरुष है ना स्त्री है। हाँ आपने जो कहा वो भाव ठीक है आपका, आप और आगे के भाव में चली गई, आगे के भाव में सही बोला माता जी ने कि कृष्ण एक पुरुष है और बाकी सब भोगने वाली स्त्रियां हैं, तो सब आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है स्त्री का, भोगने वाली, लेकिन वैसे कोई स्त्री नहीं, फॉर्म स्त्री का नहीं है, आत्मा मीन्स आत्मा है ना, वो ना पुरुष है ना स्त्री है। तो हम पुरुष सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री कहती है मेट्रो ट्रेन में कि स्त्रियों के महिलाओं के लिए दो शेर छोड़ दो, बोले भाई आप मतलब महिला थोड़ी, आप तो आत्मा। अभी आप समान का दर्जा कर रही थी कि पुरुष और स्त्री समान है, फिर मेट्रो में एक डब्बा स्त्री के लिए क्यों अलग से? सरकार भी मान रही है कि स्त्री कमजोर है,
है? फ्री होने जा रहा है,
फ्री होने जा रहा है क्या ट्रेवल? तो फिर अब फिर तो स्त्री बनना ज्यादा अच्छा है, बताइए। तो फिर क्या हम समझे? तो ना स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, अगर तो उस भेद क्यों नहीं है, उसका कारण है हम सब आत्मा है, स्त्री भी वही आत्मा है और पुरुष भी वही आत्मा है, जानवर भी वही आत्मा है, पेड़ भी वही आत्मा है। तो ये जो धर्म है ना जिसमें मटके हुए, पुरुष का धर्म, पति का धर्म, राजा का धर्म, बॉस का धर्म, तो बॉस नहीं बनना है, दास बनना है। हमारे रिलीजन में बोलते हैं क्या, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, दास अनुदास, दास का भी दास बनो, कृष्ण के दास का दास बनो, है ना। और लेकिन हम क्या बनते हैं, बॉस का भी बॉस। अरे बॉस आपको मालूम क्या मैं कौन हूं, ऐसे बोलते हैं, बॉस का भी बॉस। तो बॉस एंड बॉस फिलो, हमारी बॉस अनु बॉस फिलोसफी नहीं है, क्या फिलोसफी है, दास अनुदास। हाँ जितना ज्यादा दास पे दास बनेंगे, कहते हैं कृष्ण दास बिंदास, क्या कहते हैं, माया दास सदा उदास, माया दास सदा, माया में जो रहेगा, माया का जो दास है, अपने को पुरुष समझेगा, स्त्री समझेगा, पैसे वाला समझेगा, गरीब समझेगा, प्रॉब्लम में समझेगा, माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास, कृष्ण का दास बिंदास रहता। उसे मालूम है मेरी केयर कौन करेंगे, कृष्ण करेंगे, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण मारने पे आ जाएंगे तो कोई बचा नहीं सकता, और कृष्ण बचाने पे आ जाएंगे तो बबरू वाहन को अर्जुन ने मार दिया, अर्जुन को मार दिया बबरू वाहन ने, फिर भी कृष्ण ने उनको जीवित कर दिया। अर्जुन कहते क्या फल मिला, एक पुत्र मिला और एक पुत्र चला गया, कर्ण का जो पुत्र था वृष केतु, कर्ण के मारे जाने के बाद वो उन्हीं के साथ रहता था, बोले अभी ये एक पुत्र चला गया और एक पुत्र मिल गया बबरू वाहन, तो क्या फायदा हुआ? कृष्ण कहते हैं जब मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूं तो वृष केतु को नहीं कर सकता हूं, तुरंत वो वृष केतु को भी जीवित कर। तो भगवान जहां है वहां डरने की जरूरत नहीं है, और यही संजय का अंतिम उपदेश है भगवत गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगियों में योगी योगेश्वर कृष्ण है, तत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां पर धनुर्धर अर्जुन जैसे भक्त हैं वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, तत्र श्री विजय भूति, विजय होगी, पैसा होगा, ध्रुवनी तिरम तिरमा, ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, लास्ट श्लोक, ध्रुव नीति है, इस बात में कोई भी कमी नहीं है। सच्चाई क्या है कि जिस व्यक्ति के पास कृष्ण है और वो अर्जुन की तरह समर्पित है, उसके पास श्री लक्ष्मी होगी और उसकी विजय भी संसार में होगी, लेकिन लोग करते नहीं है, सर्वधर्मान परित्याजम नहीं करते हैं। वो कृष्ण मंदिर में तो जाएंगे, जय श्री कृष्ण तो बोलेंगे, लेकिन वो समर्पित सभी लोगों को बराबर, इक्वल, सबको इक्वल रखना चाहते हैं। कृष्ण कहते नहीं, सर्व धर्मान परित्याजम, शरीर के धर्म छोड़ो, शरीर से जुड़े हुए धर्म, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ईसाई हूं, मैं शिव जी का उपासक हूं, मैं सब कुछ छोड़ दो, तुम एक आत्मा हो और भगवान कृष्ण जो है उसकी शरण में जाना है बस। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का दास बनना मेरे जीवन का पर्पज है। तुम स्वामी हम सेवक, कृपा करो भरता, तुम स्वामी हो मैं सेवक हूं। और भगवान मानते भी कुछ नहीं है कि 1 करोड़ रुपए महीने के शुरुआत में दोगे तो सेवक मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। कृष्ण क्या कहते हैं? बहुत सरल है, मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। चार चीजें भगवान ने कही, क्या क्या? मन मना, मन में मेरा चिंतन करो, मन मना। हमेशा जब भी चिंतन करना हो तो न स्त्री का करो, न पुरुष का करो, न वीडियो गेम का, न पैसे का, न टेंशन का, बस एक चिंतन करो, कृष्ण 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 कृष्ण। मन मना, मन में रखो मुझे। प्रॉब्लम है, पैसा लगता है कृष्ण को मन में रखने में? कोई रेंट आता है 500 रुपए महीना, 200 रुपए? मन मना। दूसरा है मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। तो भक्त बनने के लिए क्या करना है? संडे को प्रशांति धाम आ जाओ, गीता क्लास में आके बैठ जाओ, है कि नहीं? प्रसाद खाओ बढ़िया सा, यहाँ पर कोई ना कोई बार बार स्पॉन्सर मिल जाता है, कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता है, स्पॉन्सर का प्रसाद खा लो फ्री में, पैसा भी नहीं लगता, फिर कथा भी सुन लो बढ़िया सी, उससे शुद्धिकरण हो जाता है, और समय जब मिले तो थोड़ा जप कर लो, 2 माला 4 माला 8 माला, है कि नहीं? क्या बोलना होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें किसी चीज में पैसा लग रहा? माला करने में लगता है पैसा? लगता है आपका? आपका लगता है? धीरज, कितना पैसा लिया हमने आपसे माला का? कुछ नहीं। कितने साल से कर रहे हो? 1 साल से माला कर रहे हैं। कुछ पैसा गिरीश प्रभु आपका पैसा लिया कोई हमने माला करना? पैसा नहीं लगता है, फ्री में भगवान प्राप्त हो रहे। भगवान कह रहे मन मना मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, और मद याजी मेरी पूजा करो, घर में जो मिल जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन चार चीजों में से जो होगा चढ़ा दो, मैं स्वीकार करूंगा। पत्ता हो घर में, तुलसी का पत्ता हो, पत्रम पुष्पम कोई फूल मिल जाए, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, गेंदे का फूल, पत्रम पुष्पम फलम कोई फल हो, चीकू हो, अंगूर हो, नहीं तो खरबूजा हो, तरबूजा हो, जो मिल जाए वो चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल, एक जल का प्याला भर के भगवान के पास रखना चाहिए। जैसे हमारे पास रखते हैं, क्यों? हमें प्यास लगती है, आपके मन में भाव है तभी तो रखा, इनको नहीं लगती क्योंकि ये मूर्ति है ना, पत्थर है, ये तो फोटो है, भगवान थोड़ी है। जब तक ये भाव है कि भगवान नहीं है, भगवान कभी प्रकट नहीं होते, कभी नहीं होते। एक बार एक व्यक्ति था, वो देवी का उपासक था, और उसका एक मित्र था जो कि गोपाल जी का उपासक था, रोज गोपाल जी की पूजा करता था। लेकिन गोपाल जी की पूजा करते करते बेचारा 20 साल में साइकिल पे ही चलता रहा, और उसका जो दोस्त था देवी का उपासक, वो गाड़ी ले आया। तो एक बार दोनों की टक्कर हुई, अरे दोस्त मित्र गांव की गली से जा रहे थे, अरे मित्र बड़ी गाड़ी, नई साड़ी पत्नी की माता जी की, और नई गाड़ी, नई नौकरी, इतना पैसा, क्या बात है, क्या सब माँ की कृपा है, देवी माँ ने सब दिया है। खैर तुम्हारे पास, तुम कब देवी के मंदिर में जाते? कह रहे अरे हम गोपाल जी के है ना, सुदामा बना दिया हमको, कुछ दिया ही नहीं हमको, लड माखन खिलाते रहो उनको, कुछ देते रहते हैं, हम वही मास्टर थे 20 साल पहले, आज भी वही मास्टर जी हैं, साइकिल पे चल रहे गांव में। ओह खैर, तो देवी ने मना कब किया है? तुम पूजा कर सकते हो। अच्छा हम भी कर सकते हैं ना। तो अष्ट धात्री 8 भुजा वाली एक मूर्ति ले आया देवी की, घर पे लाके रख ली, और लड्डू गोपाल जी जो थे उनको उठा के ऊपर खिड़की पे रख दिया। बोले अब तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, 20 साल हो गए, कुछ दिया नहीं, अब देवी का टाइम है, अब देवी मैया नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जौ लगा दिया, सब कर दिया, चलो अब क्या हुआ। लेकिन 20 साल से प्रेम तो गोपाल जी से था, वो आज दिन उठाना सुलाना खिलाना नहलाना सारा काम करते थे, तो भाव तो था उनसे। एक कुत्ता हो घर में तो उससे प्रेम हो जाता, ये तो फिर भी ठाकुर जी भगवान है, तो उनसे प्रेम उत्पन्न हो गया। इतना प्रेम हो गया भगवान से कि अगरबत्ती चला रहा है देवी माँ को, माँ मुरादे पूरी कर दे, और गा रहा है वहां पे। और इतने में क्या हुआ, अगरबत्ती लगाई, अब धुएं का तो प्रारब्ध स्वभाव है, क्या है, ऊपर जाएगा, तो धुआं ऊपर जाने लगा। अब ये ऊपर देख रहा है, कह रहा है बताओ, देने के टाइम पर कुछ नहीं था इनको, आज देवी जी को हमने अगरबत्ती लगाई, उसका फ्री में धुआं सूंघ रहे बैठे हुए। अभी इनको बताता हूँ, इनका सब कुछ बंद कर दूंगा, खाना पीना सूंघना बंद कर दूंगा। नीचे उतारा, रुई के 2 गोले बनाए, भगवान की नाक में घुसा दिए। बोले फ्री में बैठे बैठे सूंघते हो आप हमारा धुआं, देवी का धुआं है, देवी देगी अभी देखना। तो जैसे ही नाक में घुसाया है ना, तुरंत भगवान प्रकट हो गए कृष्ण। अभी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, बोला अरे प्रभु 20 साल माखन मिश्री खिलाया तब कभी प्रकट नहीं हुए, आज गोला लगा दिया नाक में तो प्रकट हो गए। भगवान बोले अभी 20 साल तक तू मुझे पाषाण मूर्ति मानता था, पत्थर की मूर्ति, आज पहली बार तूने मेरे 64 गुणों में से एक गुण को स्वीकार किया कि मैं सूंघ भी सकता हूँ। जैसे ही आप पत्थर से भगवान मानोगे ना, भगवान बहुत लीला करते हैं, लेकिन आप इन्हें मानोगे फोटो है भगवान थोड़ी है, तो क्या वो ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे, उनको क्या है। यही हमारा अगला श्लोक है, हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे भगवान क्या कहते हैं। 11वां श्लोक निकालेंगे, 4th chapter का 11th, दिस इज लास्ट श्लोक है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे, समय हो गया है। इसी कथा को पूर्ण करने के लिए श्लोक है 4.11, चौथे अध्याय का जो आपने पढ़ा 9वां, उसके बाद का 11वां श्लोक। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि अहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्यं पास। तो इसका अनुवाद हिंदी पढ़िए जरा कोई।
जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये बात प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है।
हाँ जी, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जिस जिस भाव से आप शरण ग्रहण करोगे उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। मतलब क्या, रेशियो, परसेंटेज, डिमांड एंड सप्लाई रेशियो, जिसकी जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। तुम्हें मैं चाहिए हूं तो मैं मिल जाऊंगा, तुम्हें धन चाहिए तो धन मिल जाएगा, तुम्हें पैसा चाहिए पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, पत्नी पत्नी, सुंदर, धनम देही जन्म देही सुंदरीम देही विजय देही, देते रहेंगे भगवान। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए कृष्ण। तो फिर कृष्ण, तो जो जिस भाव से मेरी शरण में आएगा उसी के अनुरूप में मैं उसको वर देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि अहम्। मैं भी भजन करता हूं उसका, जो जितना मेरा करता है उसका उतना मैं करता हूं। आप 16 माला करते हो हरे कृष्णा की, तो कृष्ण क्या करते हैं, 16 माला आपके नाम के, मधुमिता माता जी मधुमिता माता जी मधुमिता है, चारू माता जी चारू माता जी, कृष्ण तो करें। तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे नाम में, तो मेरा नाम जपते हो तो मैं तुम्हारा नाम जपता हूँ। ये भगवान ने इस श्लोक में बोला, 4th अध्याय 11वें में, जितने प्रतिशत तुम मेरी शरण में उतने प्रतिशत मैं तुम्हारा भजन करूंगा। आई विल चैंट योर नेम। उस भक्त के लिए भगवान अर्जुन के लिए आए, हर परेशानी में आए। इसलिए कुंती माता कहती है, प्रभु आज जब हमारे पास कुछ नहीं था तब आप हमारे साथ थे, लेकिन आज जब युधिष्ठिर राजा बन गए आप छोड़कर जा रहे हो, प्रभु आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो। तो अर्जुन पूछते हैं अर्जुन से, तुम्हें क्या चाहिए सुभद्रा, तुम्हें क्या चाहिए कुंती, तुम्हें क्या चाहिए। कुंती कहती है, कृष्ण मुझे तो एक ही चीज दे दो, दुख दे दो। खरे अरे दुख, अरे मैया तुम्हारे तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक दुख ही दुख था जीवन में, फिर और दुख चाहिए। कहा दुख नहीं चाहिए, तुम्हारा संग चाहिए। जब दुख थे तो तुम हमेशा साथ थे, लेकिन आज जैसी परिस्थिति सुख में बदल रही है तुम वापिस द्वारका जा रहे हो, तो प्रभु मुझे आप चाहिए। तो ये जीवन में जिसके हो जाए, जितने प्रतिशत कृष्ण की इच्छा उनको पाने की इच्छा, उतने प्रतिशत कृष्ण आपके जीवन में। कृष्ण कहते हैं तुम मेरे नाम में, बोलिए मैं तुम्हारे काम में, हाँ आप उनका नाम लेंगे वो तुम्हारे काम करेंगे, है ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9 साल का एक 4.5 साल का, कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी आप तो यंग एज में प्रचार करने लग गए, घर का ख्याल नहीं रखते हैं, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं उसके नाम में वो हमारे काम में। और होता भी है ऐसे, कई कई ऐसे काम हुए हैं जहां पर हम नहीं हैं फिर भी काम हो जाते हैं, अनुभव एक्सपीरियंसेस है। वो कहते तुम मेरे नाम में, बोलिए मैं तुम्हारे काम में, पर तुम अपने काम में तो हम अपने धाम में। भगवान भी बैठे रहेंगे आएंगे नहीं, आदमी पुकारता रहेगा, बोले प्रभु इतना पुकारा तुम आए नहीं, बोले तूने कभी पुकारा मुझे, किस किस बदौलत तुम मुझे बुला रहे हो। किसी को बुलाने के लिए रिश्ता निभाना पड़ता है पहले, जब प्रेम का रिश्ता होता है तब भगवान बिना बुलाए भी आते हैं, है कि नहीं। गजेंद्र ने एक पुकार लगाई थी गोविंदा, और वहां पर कृष्ण प्रकट हो गए थे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके खाना पीना वहां पहुंच गए गज को ग्रह से मुक्त कराने के लिए, गजेंद्र मोक्ष। लेकिन हम पुकारेंगे नहीं, जब करने में कंजूसी करेंगे, बोले एक माला घिसते घिसते कभी कभी कर लेते हैं, टंगी रहती है प्रभु जी जब से आपने दिए दो टंगी हुई है कर रहे हैं। तो उतने ही भगवान आपके जीवन में आएंगे। जितना आप बढ़ा देंगे उतना ज्यादा भगवान आपके जीवन में प्रकट होंगे। फैक्ट तो भगवान ने बोला चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कि ये यथाम माम प्रपद्यंस्ते ताम स्तते व भजामि हम, जितना प्रतिशत मुझे चाहोगे उतना प्रतिशत आपके जीवन में आऊंगा। तो हमें अपनी परसेंटेज बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, है ना। हम जाए तो अगली बार 10 लोगों को साथ ले गए, बोले चलो भगवान की सेवा के लिए, सुनो कथाओं को और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था प्रशांति धाम वाला, तो 3-4 लोग आते थे, हाँ। उस 3-4 लोगों से बढ़ते बढ़ते फिर मुनीर का अपार्टमेंट के सभी भक्त आए, खंडेलवाल जी आए, जैन साहब आए, सब लोग आए, और नवीन प्रभु, पवन जी, सारे भक्त मिल करके, है कि नहीं, सब लोग मिले जुड़े, और उसके बाद में अब बढ़ते जा रहे हैं, अब प्रशांति धाम के भक्त भी आ रहे हैं।
महाराज जी, आपसे आग्रह है कि अगर कोई कुमारी कन्या हो और वो अगर कुमारी की स्थिति में ही भगवान कृष्ण का भक्ति करे तो इससे भगवान ज्यादा मतलब भगवान के प्रति भक्ति का भाव होगा, और जो शादी कर लिया उससे उतना नहीं होगा।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है दोनों को भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि जो स्त्री शादी करेगी उसको उसका कम भाव,
सदा के लिए मतलब भगवान कृष्ण के,
वो आपने बताया था आप ही की बेटी का, आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम,
वो शादी करने के,
मैंने आपको बोला था उनको लेके आइए मैं समझाऊंगा उनको। ब्रह्मचारी ने कभी होती नहीं है, शास्त्र में सन्यासी और ब्रह्मचारी नाम की कोई स्त्री का वर्णन
नहीं,
शास्त्र में ब्रह्मचारिणी या सन्यासिनी नाम की कोई स्त्री का वर्णन नहीं। स्त्री शास्त्र में स्त्री को गाय के समान और आटे के समान बताया गया। आटे के समान कैसे बताया गया, वो कहते हैं जैसे गांव में आटे का दीपक होता था। हरि बोल, बातें नहीं करिए प्रभु जी, थोड़ा क्षमा करिए, बाद में कर लीजिए थोड़ा। आटे का जो दीपक होता, देखा आप लोगों ने गाँव में आटे के दीपक बनाते थे, आटे के दीपक को आपने जलाया भगवान के आगे, वो आटे का दीपक जब तक जल रहा है तब तक तो कोई कौवा जानवर नहीं खाएगा, लेकिन वो सूख गया तो क्या होगा, पक्षी आकर उठा के ले जाएगा। तो शास्त्र में स्त्री को बहुत ऊंचा सम्मान दिया गया, कहा यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता विराजमान है। लेकिन नारी की पूजा किस प्रकार से, जब वो छोटी हो तो पिता के संरक्षण में बड़ी होनी चाहिए, जब वो बड़ी हो जाए युवा हो जाए तो उसका विवाह होना चाहिए, पति के संरक्षण में उसको रहना चाहिए, और जब वो बुजुर्ग हो जाए तो अपने बेटे के संरक्षण में। ये 3 स्थिति स्त्री की, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं है। अगर उस स्त्री कोई ऐसे कहती नहीं मैं तो ऐसी रहूंगी, मुझे नहीं करना है, बहुत झंझट है संसार में, तो आप कितने भी शास्त्र पढ़ेंगे ऊंची ऊंची स्त्रियां देखेंगे जो कि पंच कन्या है, सबसे पवित्र अनुसुईया माता उनका भी विवाह हुआ, वृंदा माता उनका भी विवाह हुआ, मंदोदरी उनका भी विवाह हुआ, तो यहाँ पर द्रौपदी, ये सब विवाहित स्त्रियां हैं जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। मीराबाई का लोग चर्चा करते तो मीराबाई भी पति के साथ ही रहती थी, बाद में उन्होंने अपने विवाह को खत्म किया, क्यों, कारण था कि सभी लोग उनके जान के दुश्मन बन गए थे, लेकिन विवाह किया है। तो विवाह एक स्त्री का मामत्व को प्रदान करता है, जिस स्त्री ने विवाह नहीं किया वो कठोर बन जाएगी, संसार से इमोशंस खत्म हो जाएंगे। अगर किसी का अपने माँ बाप के लिए, संसार के लिए इमोशन नहीं है तो कृष्ण कहते हैं वो इमोशन मेरे लिए कैसे होगा, वो ड्राई फिलॉसफी है, सूखा ज्ञान। असली ज्ञान में तरलता क्या है, कृष्ण जो कहा उसका भागवत का पालन करें, आचार्यों की वाणी का पालन करें। अगर मनोधर्म पालन करना है तो फिर हम भक्त नहीं है ना, अपने मन से सोच रहे हैं, तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है। समझना कुछ नहीं होता है, हम कैसे समझेंगे, आचार्यों की वाणी को मानना पड़ेगा
जी। तो वो ऐसे ही वो कहते हैं कि दुनिया में संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है यही, और इनको बाल रूप में मतलब,
देखिए प्रेम अच्छा है, करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं।
ये दुनिया संसार सब झूठा है और यही हमारे लिए जो है सबसे,
तो मायावादी लोग कहते हैं ऐसा संसार झूठा है, क्यों, मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है कि नहीं, ऐसा कहते हैं मायावादी कि ये संसार झूठा है। लेकिन उसी मायावादी से पूछो रोटी खाते हो, कहेगा खाते हैं, बोले जब ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या तो रोटी भी तो जगत की है, ब्रह्म की रोटी थोड़ी है, क्यों खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, ये भी तो सत्य ब्रह्म की मिथ्या है, मत पहनो मत खाओ। तो प्रभुपाद बोलते थे अगर ब्रह्म सत्य है तो उसका जगत भी सत्य है, परंतु फर्क क्या है, वो शाश्वत है और ये अशाश्वत है, ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि एक समय पे प्रलय आती है फिर दोबारा बनता है फिर जलता है फिर प्रलय आती है, परंतु भगवान का धाम शाश्वत है। लेकिन ये मिथ्या नहीं है, और जब वात्सल्य प्रेम कृष्ण से हमने कर लिया, हमने उनको पुत्र मान लिया और हम स्त्री हैं, तो हमें पति भी तो चाहिए, क्योंकि बच्चे को माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं। मैं माँ तो बन गई, लेकिन पिता कौन बनेगा उस कृष्ण का? नंद और यशोदा बनना पड़ेगा ना। आप यशोदा बन जाए बहुत अच्छी बात है, और नंद बाबा भी तो चाहिए। देखिए शास्त्र युक्ति है, बाकी मनोधर्म है, सबकी अपनी अपनी है। भगवान ने अर्जुन को भी पूरा गीता का ज्ञान दिया और अंत में कहा यथा इच्छासी तथा करु, जो तेरी इच्छा है वो कर। अर्जुन ने अपनी स्वेच्छा से कृष्ण की बात मानी, और जो नहीं मानते दुर्योधन ने नहीं मानी, वो पछताना पड़ा। तो शास्त्र हमारे पास है, आचार्यों की वाणी हमारे पास है, वैष्णव गुरु भक्त हमारे पास में, हम अपने मन से सुने तो हम मनोधार्मिक है, हम भक्त नहीं है। भक्त शास्त्र मानता है, अपने मन की नहीं सुनता। जो मन की सुनता है वो मन की बन जाता है बंदर। हाँ, मन की सुनने वाला मंकी होता है। अब कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। सो हमें आचार्यों की वाणी को अनुगमन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा।